संगम युग में प्यारे बाबा ने सारे विश्व की आत्माओं में से ड्रामा की विशेष हम आत्माओं को चुन करके इकट्ठा किया है। बाबा के प्यार में परिवार का मिलन हुआ है। मिले बाबा से हरेक और बाबा से मिलते मिलते परिवार भी मिल गया, तो ये हमारा स्नेह मिलन है। आत्मा अकेली पुरुषार्थ नहीं कर सकती है, उसे संगठन चाहिए। तो बाबा ने एक ही लक्ष्य वाली, एक ही बाबा में निश्चय बुद्धि योग लगाने वाली और एक ही प्रकार का पवित्र योगी जीवन जीने वाली हम आत्माओं का संगठन बनाया, ताकि एक दो को सावधान करते हुए हम उन्नति को पा सकें। हम मिल करके स्वयं को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करें और बाबा की सेवा को, बाबा ने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है विश्व परिवर्तन का, उस सेवा कार्य को हम मिल करके संपन्न कर सके। भक्ति में हम यथाशक्ति यथा भावना पुरुषार्थ करते, लेकिन ज्ञान मार्ग में पूरी शक्ति से और पूर्ण निश्चय से हमें पुरुषार्थ करते। यथाशक्ति यथा भावना नहीं, बाबा कहते हैं 200 नाखून का जोर लगाकर पूरी ताकत से और दृढ़ निश्चय के साथ पुरुषार्थ करना है। और यथार्थ मार्ग पर, श्रीमत के मार्ग पर उठाया हुआ पुरुषार्थ का हर कदम हमें मंजिल की ओर ले जाता है। टाइम सिग्नल भी बाबा देते हैं कि अब समय की मार्जिन कितनी है, मंजिल कितनी ऊंची है, समय की मार्जिन कितनी है, उस हिसाब से पुरुषार्थ की स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो हिसाब हमें लगाना है। इसलिए पूरी सीजन में तीव्र पुरुषार्थ की बात बाबा ने कही है। क्यों तीव्र पुरुषार्थ की बात कही? क्योंकि अब हम मंजिल के समीप पहुंच गए, अंत में आके थक न जाए, नजदीक आते आते नैया डूब न जाए, इसलिए बाबा और शक्ति लगाकर पुरुषार्थ करने के लिए हमें कहते हैं। हम अपने मन से कई बार निर्णय कर लेते हैं, बस अब बहुत पुरुषार्थ किया मैंने, लेकिन पुरुषार्थ करने वाली आत्मा थकती नहीं है। यथार्थ विधि से पुरुषार्थ करने वाली आत्मा कभी थकती नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल बाबा दादियों को हम देखते हैं कि वे अंत तक पुरुषार्थ में लगे रहे, अंत तक सेवा करते रहे हैं। यहां कोई भी रिटायर्ड नहीं होता है, और दिन प्रतिदिन हमारी लगन पुरुषार्थ बढ़ते जाते हैं। और आप देखेंगे आजकल समय भी दुनिया में फास्ट, हर चीज फटाफट हो जानी चाहिए, इसलिए रिफाइंड साधन निकालते हैं, रिफाइंड सिस्टम्स अपनाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं, ताकि थोड़े समय में ज्यादा प्राप्ति कर सके। जो चीजें खोजी थी जीवन की सुविधाओं के लिए, समय प्रति समय कितने साधन बनते गए। वर्तमान समय आप देख रहे होंगे कि वही साधन और रिफाइन कर रहे हैं, वही साधन रिफाइन कर रहे, माइक्रो सूक्ष्म बना रहे हैं, छोटे से छोटा एंड लाइट हल्के, और हर चीज कॉम्पैक्ट, एक में अनेक सिस्टम्स वाली बना रहे, है ना? पहले के रेडियो कैसे थे, कितने बड़े बड़े, कंप्यूटर कैसे थे, टीवी कैसे थे, अब सब चीज रिफाइन होके एकदम सूक्ष्म, माइक्रो कॉन्सेंट्रेटेड, रिफाइन सिस्टम, कॉम्पैक्ट, एक ही चीज में सब कुछ आ जाता है। द वो समय भी हमें कह रहा है कि हमारी भी जो ये साइलेंस की दुनिया है, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया है, हमारे भी जो योग सेवा के साधन है, उसको भी हमें और क्वालिटेटिव और सूक्ष्म बनाने हैं, ताकि थोड़े समय में, जैसे आज बाबा ने कहा, कितनी पावरफुल लाइट की सेकंड में भस्म हो जाए, ऐसी पावरफुल स्टेज कि एक संकल्प से हम भावना पूरी कर सके, लक्ष्य पा सके। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ की बात बाबा करते हैं। तो जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे त्याग है, तपस्या है, योग है, वैराग्य है, सेवा है, सहयोग है, ये जो भी हमारे पुरुषार्थ है, हमें उसको और रिफाइन, क्वालिटेटिव बनाना है। तो ऑटोमेटिक पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। त्याग किया है लेकिन वो त्याग और जिगरी एक धक से किया हुआ पावरफुल त्याग, निर्संकल्प होके किया हुआ। तपस्या हमारी पूरी एकाग्रता वाली, लाइट एंड माइट बाबा कहते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, नित्य पढ़ाई है, रोज तपस्या करते हैं, अंदर से बेहद का वैराग्य है, प्रैक्टिकल में त्याग है, सेवा है, सहयोग है, ये सब कुछ हम चेक करें कि जिगरी शक्तिशाली धक से किया हुआ है। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए बताते हैं ना कि भाई जो उड़ने वाले साधन होते हैं, डबल रिफाइन पेट्रोल डालते हैं, डबल रिफाइन पेट्रोल डालते हैं, सरफेस पर, पृथ्वी पर घूमने वाले साधनों की तुलना में उड़ने वाले साधनों में डबल रिफाइन पेट्रोल चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ कहें, उड़ती कला का पुरुषार्थ कहें, रिफाइननेस चाहिए। हमारे ज्ञान और योग के पुरुषार्थ में रिफाइननेस चाहिए। प्योर नॉलेज जो बाबा कहे मुरली में, श्रीमत एज इट इज धारण करनी है, अपनी अनुकूलता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार मॉडिफाई करके हम धारण करते हैं, वो नहीं, as it is, jaisa baba kehte. Isliye baba ne kaha hai, parmat manmat add nahi karni hai. Aapas ki purusharthi avastha ki mate add nahi karni. Hum apni riti se tod jod karke mod ke फिर धारण करते हैं. तो बाबा कहते हैं ना कि प्योर सोना और मिक्स चमक दमक वैल्यू सब में अंतर हो जाता है. हमारा सौभाग्य है कि बाबा का सद्ज्ञान हमें मुरली से डायरेक्ट प्राप्त होता है. प्रतिवर्ष 8-10 बार अभी तक खुद बाबा आते हैं और लेटेस्ट इशारे देते हैं. वो तो हम स्वयं देखते हैं और सुनते हैं. तपस्या हम करते हैं, जब भी तपस्या करे दिल से अपनी इच्छाओं को विचारों को रसों को समेट कर पूरी एकाग्रता से हम करें. और हमारी तपस्या का प्रभाव हमारे कर्म में दिखाई दे. सिर्फ योग अभ्यास करे तब हम योगी, उठने के बाद अलग नहीं. कर्म में योग का प्रभाव दिखाई दे कि ये योगी आत्मा है. कर्म से वो सिद्ध होना चाहिए. सेवा जो करते हैं उसमें भी रिफाइननेस. जो बाबा ने कहा है निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल स्वभाव और वाणी, वो सेवा जमा होती है, आत्मा को शक्तिशाली बनाती है. तो टोटल इस ब्राह्मण जीवन के अंदर पुरुषार्थ के नाम पर जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हम चेक करें कि क्वालिटेटिव करें, काम चलाओ दें, जिगरी करें, तो आत्मा योगी एकदम पावरफुल तैयार. पुरुषार्थ को तीव्र करना है, फास्ट स्पीड से जाना है तो हाईवे पकड़ना होता है. एक्सप्रेस वे को पकड़ना होता है तो आप फास्ट गति से जा सकते हैं. हमारा हाईवे है मम्मा बाबा को फॉलो कर. और कोई बातें हमें माइंड ना हो, हम नंबर वार है आपस में, हम खुद भी और हम सभी. इसलिए बाबा कहते हैं कि जो नंबर वन है उसको फॉलो करो. जो यज्ञ की मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा, उसी में चलो, इधर उधर नहीं। बाबा और मम्मा दादियां, उसको फॉलो करना है। तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इधर उधर गली कुची में चले जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, हम भटक जाते हैं, इसलिए हाईवे पर चलना है। कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं आने चाहिए। जितने स्पीड ब्रेकर उतनी बार गति धीमी करनी पड़ती। विघ्न नहीं आवे। विघ्न हमारी शक्ति को खर्च कर देते हैं, हमारी स्पीड को ढीला कर देते हैं, है ना? कोई हमें ब्रेक ना कर सके। आपने देखे होंगे एक्सप्रेस वे दोनों तरफ फेंसिंग कर देते हैं, है ना? कोई साइड से इंटरफियरेंस नहीं आने चाहिए। हमारी धारणा योग पुरुषार्थ सेवा सहयोग में कोई इंटरफियरेंस नहीं, कोई विघ्न नहीं, रुकावटें नहीं। और इसलिए बाबा ने तीन बिंदी का पुरुषार्थ कहा। और प्रैक्टिकल में ये तीनों बिंदी निर्विघ्न बनने में मदद करते हैं। पहला बिंदु, मैं स्वयं आत्मा बिंदु, देह से अलग, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति। ये बिंदु खुद को अप्लाई किया, आत्माभिमानी बने, आत्मस्मृति दृष्टि वृत्ति रही, आप अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से भूले नहीं होती हैं, पाप नहीं होते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस सभी बुराइयों का मूल कारण है, बाबा कहते हैं। जिस घड़ी हम भूल करते हैं, स्वयं से डिस्कनेक्ट होते हैं, हम खुद को भूले हुए होते हैं उस समय। बाबा कहते हैं ना, देह भान आने से फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आते हैं। इसलिए मैं आत्मा बिंदु, सभी आत्मा बिंदु, जितना प्रैक्टिकल आत्माभिमानी, केवल स्मृति की बात नहीं, आत्माभिमानी बनने के लिए, आत्माभिमानी स्थिति के लिए आत्मस्मृति आत्मदृष्टि ये पुरुषार्थ है, अभ्यास है। पर आत्माभिमानी स्थिति माना, स्वयं के निजी गुणों में स्थित होकर जीवन जीना, कर्म व्यवहार करना, तो ऑटोमेटिक इस पहले बिंदु से विघ्नों को हम प्रिवेंट कर सकेंगे, प्रिवेंशन, क्योंकि आत्मभिमानी बनने से जीवन पद्धति ऐसी बन जाती है कि हम विघ्न क्रिएट नहीं करेंगे। कई बार हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना इस प्रकार का होता है कि हम ही विघ्न उत्पन्न करते। जीवन की कई समस्याओं का कारण हम खुद होते हैं। स्वदर्शन करके देखिए, हमारे अपने स्वभाव संस्कार, हमारी कमजोरियां वो ही विघ्न उत्पन्न करते हैं। और जब भी कोई विघ्न आते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उनके सॉल्यूशंस बाहर खोजते हैं, बाहर खोजते हैं। इसके कारण आया है, ये ठीक हो जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, है ना, सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं। पर हमेशा स्वदर्शन करो, कहीं मैं ही तो कारण नहीं। मेरा अपना उठना, बैठना, बोलना, चलना, देखना, सोचना इस प्रकार का होता है कि विघ्न उत्पन्न होते। आप देखना, कईयों का चलना ऐसा होता है, कितनों से टकराते रहेंगे, चीजें गिराते रहेंगे। देखना, आपको ऐसे मिलेंगे सैंपल। आत्मभिमानी बनने से हमारा व्यक्तित्व इतना पॉजिटिव बनता है, स्मूथ बनता है। जो हमारा टेढ़ा बांकापन है वो खत्म हो जाता है। हम कहते भी है कि ये व्यक्ति सीधा नहीं है, बड़ा टेढ़ा है, हर बात में इनको प्रॉब्लम होता है। हम अपनी पर्सनालिटी में देखें, हमारे में कहीं टेढ़ा बांकापन तो नहीं। टेढ़ा बांकापन होगा तो हम कहीं भी सेट नहीं हो सकेंगे। हम चुपते रहेंगे, एक दो को दुख देते रहेंगे। आत्मभिमानी बनना, खुद को बिंदु आत्मा का तिलक लगाना माना, ओरिजिनल नेचर में जीना, मैं शांत आनंद प्रेम सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्ध सत्य ज्ञान शक्ति स्वरूप आत्मा। प्रैक्टिकल में मेरा लक्ष्य रहे, मुझे इन गुणों का स्वरूप बनकर व्यवहार करना है। यह है प्रैक्टिकल सोल कॉन्शियसनेस। केवल स्मृति नहीं, जब आप सोल कॉन्शियस है, कर्म राइटियस होंगे। मैं आत्मा भाई को मारती हूं, ऐसे नहीं हो सकता। जो आत्मा समझेगा वो ऐसे कर्म कर ही नहीं सकता है। ये है सोल कॉन्शियस। इसको कहते हैं आत्म बिंदु लगाना। 50% विघ्न खत्म हो जाएंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे। प्रिवेंशन करता है, पहला बिंदु विघ्नों को उत्पन्न ही नहीं होने देता है। अब तक जो कर्म हमने किए हैं, हिसाब बनाए हैं, उनके फल स्वरूप जो विघ्न आएंगे, चलो नए उत्पन्न नहीं होंगे, पर जो हिसाब बनाए हैं उसके कारण जो विघ्न जीवन में आते हैं, हमें पता है अंतिम जन्म है, परिवर्तन का समय है, हिसाब किताब क्लियर कर वापस जाना है। हर डिपार्टमेंट में, बैंक में, दुनिया में एनुअल अकाउंट सेटिंग होता है, चेकिंग होता है, अकाउंट क्लियरेंस होता है। ये कल्प का हिसाब है। अब तक तो माइनस प्लस होता चला आया, अब लास्ट क्लियर। इसलिए विघ्न किए हुए कर्मों के हिसाब के कारण आएंगे, लेकिन अगर मैं दूसरा बिंदु लगा दूंगी कि मैं उस ऑलमाइटी बाबा की संतान हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा है मेरे साथ, अगर बाबा याद है, बाबा साथ है, बाबा से मैं जुड़ी हुई हूं, ऑटोमेटिक मैं एम्पावर हो जाऊंगी, शक्तिशाली बन जाऊंगी, आए हुए विघ्न को मैं फेस कर सकूंगी। कितने भी हिसाब किताब आ जाएं, शरीर के आ जाएं, दुनिया के आ जाएं, देह संबंधों के आ जाएं, प्रकृति के आ जाएं, ईश्वरीय परिवार से आ जाएं, ये हिसाब चुकाने के लिए अब मैं अकेली नहीं हूं, बाबा मेरा साथी है। बाबा मेरा साथी है। कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, लेकिन भल खुद ही कर्म भोग भोगेंगे, लेकिन मित्र संबंधी साथ है, खड़े हैं, तबियत समाचार पूछते रहते हैं, अपनी सिंपथी दिखाते हैं, तो दर्द कम महसूस होता है। अब तक हम अकेले हिसाब चुकाते रहे, अब बाबा हमारे साथ है। वो हमारा तमाशा देखते नहीं है, वो हमें मदद करते हैं। दुनिया में तो लोग देखते रहते हैं कि अच्छी परीक्षा आई है, अच्छी माया इसको आई है ना, लेकिन बाबा साथ है। वैसे तो अनेक साथ है, ब्राह्मण परिवार में भी है ना, है ऐसी आत्माएं, लेकिन फिर भी हम कहें कि बाबा मेरे साथ है। बस ये दूसरा बिंदु, तुरंत बाबा को साथ बुला लो, बल्कि रहो ही साथ। मैं जहां हूं वहां बाबा मेरे साथ है, मैं याद करती हूं और वो मेरे साथ हो जाते हैं। तो आप में हिम्मत शक्ति आ जाएगी, और जब हम शक्तिशाली बन जाते हैं वही बात छोटी लगेगी, विघ्न छोटा लगेगा। जो पहाड़ लग रहा था राई हो जाएगा। बाबा ने ऊंचा उठा लिया तो बातें, विघ्न, परिस्थितियां छोटे हो गए, ऊंचे स्वमान में स्थित कर दिया, बाबा के साथ हम हो गए। तो परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, विघ्न हमारे पुरुषार्थ को ढीला नहीं कर सकते। नॉर्मली बाबा के हम बच्चे अच्छे पुरुषार्थी ही होते हैं, पर जब विघ्न आते हैं, बातें आती है, तब ढीले होने लगते हैं। लेकिन नहीं, हम समझते हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। यहां हम सिर्फ भावना से नहीं चल रहे हैं, बाबा के बने तो भी ये मुसीबत, ऐसा नहीं है। क्या हमारे सिवाय और किसको मुसीबत नहीं आती है? सबको आती, सारी दुनिया को आती। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं बाबा के बने तो भी ये मुसीबत, अपने किए बनाए हिसाबों से हम छूट नहीं सकते हैं। इस सत्य को स्वीकारे, जब हमने बनाए हम चुकाएंगे, हिम्मत रखे। बाबा की गोद हिसाब किताब से छूटकर बच के छिपने के लिए नहीं है, बाबा साथ है ना, अब क्या है। और योगी बन के और बाबा बाबा करके आई हुई परिस्थिति को फेस करेंगे, पर अपनी लगन, निश्चय, पुरुषार्थ, सेवा, सहयोग में अंतर नहीं आने दे। कई बार हम उसमें आत्माओं के व्यवहार को देख के उसमें अंतर कर देते, अब हम सहयोग नहीं देंगे, हम आत्माओं के कारण दे रहे हैं क्या? हम किसको दे रहे हैं? जिस क्षण आपने दिया 100% आपका जमा हो गया, जिसने जैसा यूज किया वो उनका हिसाब बना। पर हमारे योग में, सहयोग में, सेवा में, पुरुषार्थ में फर्क क्यों पड़े? और तीसरी बात कि बाबा को साथी बनाकर, आत्मभिमानी बनकर, श्रीमत पर यथार्थ रीति विधि से विघ्न को फेस करते हैं, फिर भी वो खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी वो खत्म नहीं होता है। तो तीसरी बिंदु ड्रामा पर छोड़ दो, हर चीज अपने समय पर हो जाएगी। मैं इतना योग लगाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, इतनी शुभ भावना रखी फिर भी कुछ नहीं हुआ, श्रीमत पर चली तो भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ड्रामा। तीसरी बिंदी ड्रामा पर दे दो, मैं नहीं समझ पा रही हूं कि क्यों ये हो रहा है, तो ड्रामा। बाबा ने कहा ना, क्वेश्चन में नहीं जाओ, एनर्जी वेस्ट होती। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही, मुझे मेरे वर्तमान के कर्मों का कोई कारण नहीं लग रहा है जिस कर्म के कारण ये विघ्न आया हो, کیوں ہوا کیوں ہوا, یہ اس میں نہ جا کر, ٹھیک ہے, ڈراما. دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں ٹائم اینڈ گاڈ آر گریٹ ہیلرز, سمے اور بھگوان, یہ دو بڑی اتھارٹی ہیں. سمے آنے پر اپنے آپ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ ڈراما میں پریورتن ہونا ہی ہے. کوئی بھی درشیہ سدا نہیں رہنا. اس سمے شکتیشالی روپ سے تیسری بندی ڈراما, فل سٹاپ. ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پرشن میں نہ جائیں, بابا میں سنشے نہ اٹھائیں کہ شریمت پر چلنے کے بعد بھی اتنے ست کرم شبھ بھاونا یوگ سب کرنے کے بعد بھی یہ پہاڑ ہٹ نہیں رہا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. اس لیے آپ یاد میں رہیے, شریمت پکڑ کے رکھیے, ٹھیک ہے. بابا نے کہا ہے سہن کرو, حساب چکاؤ, پر خوش. میں آتما دب نہ جاؤں, میں اور ستکرم میں بزی ہو جاؤں. سچ میں بابا نے یہ تین بندی نروگن بنانے کے لیے دی ہے, خود کو, اور خود بنیں گے تو دوسروں کو بھی بل بھریں گے. نروگن نرنتر پرشارتھی ہو سکتا ہے, تبھی وہ تیور بن سکتا ہے. بابا کہتے ہیں جتنی بار فلکچویشن آتا ہے, بابا مثال دیتے ہیں نا, بار بار لائٹ آوے جاوے آوے جاوے تو کیا ہوگا, ڈسٹربنس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی. کنٹینیوس سپلائی ہے تو سکھ دیتی. وگنا بار بار توڑتے ہیں ہماری انرجی کو, وہ توڑ نہ سکے اس کے لیے بابا نے تین بندو دیے. ہمارا پرشارتھ آٹومیٹک تیور ہو جائے گا. اڑنے کے پہلے تیور پرشارتھ چاہیے. ایروپلین اڑنے سے پہلے کیا کرتا ہے, رن وے پر کتنا فاسٹ سپیڈ سے دوڑتا ہے, تب جا کے اڑ سکتا ہے. یہ تیور پرشارتھ جو بابا نے اس سیزن میں بار بار ہمیں کہا ہے, وہ بھی سگنل ہے کہ اب فرشتہ بننے کا ٹائم آ گیا ہے. کرماتیت فرشتہ, کرم یوگی فرشتہ تو ابھی ہم ہیں, پر باپ سمان سمپورن کرماتیت فرشتہ بننے کی سیزن نزدیک ہے. مما اسی کے کارن جلدی سمپورن بن گئی, اور یہی وشیشتا ہم مما کی گاتے ہیں کہ بابا کا کہنا اور مما کا کرنا. سنکلپ اور سوروپ ساتھ ساتھ, سننا اور بننا ساتھ ساتھ, اس میں زیادہ ٹائم چنتن انرجی ختم کر. اور دیکھو آپ اسٹریٹ دیکھیں گے تو سہج گتی آپ کی ہوگی. آپ ادھر دیکھو اور چلنے جاؤ, آپ ٹیڑھے ہو جائیں گے, گر جائیں گے. اس لیے بابا کہتا ہے खुद में फोकस, बाबा में फोकस। ड्रामा की पटरी पर फोकस, ड्रामा की पटरी से उतरते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, पटरी से उतरना नहीं है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, खुद भगवान हमें हर बात में गाइड करता है, हमें मुंझने की उलझने की प्रश्न में जाने की कोई बात ही नहीं रही है। जब तीन बिंदी है, हम खुद ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। हम खुद ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, अपने आप सब सेट हो जाता है। हम अपना अचल अड़ोल रहे। तो इस वर्ष ये मौन भट्टियां इसलिए ही रखी गई क्योंकि बाबा शक्तिशाली संगठन चाहते। बनने वाले तो बन गए हैं, हमारे बीच में ही है वो, लेकिन पूरा संगठन चाहिए, इसलिए यहां बुलाया गया ताकि आपका जो भी कारोबार है, परिवार, नौकरी धंधा, वहां तो आप अनेकों से कनेक्टेड है, यहां इसलिए बुलाया ताकि उससे डिटैच हो जाए। मोबाइल तो स्विच ऑफ है ना, हाँ, दूसरों को हम सौंप कर ही आए हैं और शुभ कार्य के लिए आए हैं, सब कुछ सलामत ही रहेगा, निश्चिंत रहे। यहां आकर वहां से डिटैच होके यहां आ गए, यहां आके आपस में अटैच ना हो जाएं, यहां आके हम अटैच हो जाते, जो रूम पार्टनर होंगे बातों में लग जाते, इसलिए मौन रखाया गया कि यहां अटैच ना हो जाएं, वहां से तो आ गए। कहते ना, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, वहां से आ गए, अब यहां एक दो में बातें आपस में मिलते हैं तो आपस में अटैच हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा मौन रखो ताकि यहां आने के बाद भी एक दो से न्यारे, जब बात करनी ही नहीं है तो स्वयं में मगन। अब आपस में मौन है इसलिए आपस में अटैच नहीं है, पर कहीं खुद ही खुद की बातों से अटैच होते हैं, सोचते रहते, मन में विचार चलते रहते। आपने देखा होगा, कहीं अकेले बैठे होंगे तो भी मन अंदर अंदर सोचते रहते हैं, उनके हाथ एक्शन करते रहेंगे क्योंकि मन चल रहा है बातों से, घटनाओं से, मन नहीं डिटैच हुआ है। इसलिए बाबा ने ये तीन बिंदी लगाई कि मन भी डिटैच हो जाए। सच में मैं पूरी बाबा के सामने बैठ जाऊं, मन भी बातों, बीती बातों से अटैच न रहे, तो उसके लिए बाबा ने ये बिंदु लगाया, जो कुछ हुआ ड्रामा बिंदु। मुझे सिर्फ ये अटेंशन रखना है कि जो कुछ हुआ उसका कारण मैं नहीं होनी चाहिए, बस मेरा प्रयास ये है कि मैं उसकी कारण नहीं होनी चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि आप सेफ्टी से चल रहे, राइट साइड चल रहे, सेफ्टी से चल रहे, पर दूसरे आके हमारे से ठुक जाते, टकरा जाते। इसलिए ड्रामा बिंदु कि हमारा कोई कारण नहीं था पर फिर भी आके टकरा गए। फिर आपका मौन कंप्लीट रहेगा, आप अंदर से अपने आप के साथ, बाबा के साथ बहुत सुख का अनुभव करेंगे, अतीन्द्रिय सुख। तो हम सब मिलकर खुद में मगन, बाबा में मगन, कोई वेस्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इतने शक्तिशाली बन के चले और जल्दी से बाबा के कार्य को और अपने लक्ष्य को, है ना, कंप्लीट करें। बाबा कहते हैं ना, सब राह देख रहे हैं कि कब ये पूरा करते हैं। प्रकृति भी पूछती है, एडवांस पार्टी भी पूछती है, ब्रह्मा बाप भी पूछता है कि भाई मैं कब तक वतन में बैठा रहूं। इसलिए हम भी चाहें कि कब तक पुरुषार्थी अवस्था में रहना है, कोई सीमा है? कब तक हमें पुरुषार्थी रहना है? बाबा कहते हैं ना, धुन लग जाए, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे बनना है। रोज रोज सुबह उठकर बाबा के सामने हम कहें, बात करें, बाबा मुझे सच में आपके जैसा बनना है। तो हम बन जाएंगे। और आज का ना बाबा ने प्रत्यक्षता, वो हम सब मिल करके अपनी भी और बाबा की भी कर सकेंगे। ओम शांति। तीन बिंदु का अभ्यास करेंगे, दूसरा क्लास फिर शुरू होगा उसके बाद, तब तक हम अभ्यास करेंगे। मैं स्वयं में स्थित हूं, मैं स्व में हूं, शरीर में नहीं। ऊपर अपने घर में हूँ, यहाँ नहीं। साथ हूं, अन्यत्र नहीं। स्वामी घर में, बाबा में, स्वामी स्थित हूँ, तो मेरे विचारों में एकाग्रता आती है। जब बाबा में मगन हूँ, तुम विचारों में स्पष्टता आ जाती है। मन बुद्धि क्लीन क्लियर हो जाते हैं। जब स्वामी स्थित हूँ, तो वाणी में सत्यता आ जाती है। जब बाबा में मगन हूँ, तो वाणी अमृत बन जाती है। बोल मधुर बन जाते हैं। जब स्वामी स्थित हूँ, तो कर्म शुद्ध बन जाते हैं। बाबा में मगन हूँ, तो कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। मेरा समूचा व्यक्तित्व दिव्य बन जाता है। ओम